ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नवा रायपुर में शुरू हुआ 3 दिवसीय साहित्य उत्सव, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने किया शुभारंभ। धमतरी जिले में 47 लाख रुपए के इनामी 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया। और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच। अब समाचार विस्तार से। नवा रायपुर में आज से रायपुर साहित्य उत्सव शुरू हो गया है। इस उत्सव का शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री हरिवंश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साहित्य की एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा रही है तथा प्रदेश ने अपने स्थानीय संस्कृति को हमेशा मजबूती से संजो कर रखा है।
छत्तीसगढ़ी साहित्य का पुराना इतिहास है, पर उस संस्कृति को आपने बहुत जीवन तरीके से बनाए रखा है। इस पूरे आयोजन के पीछे एक स्पष्ट रचनात्मक दृष्टि मैंने पाई। बच्चों की रचनाएं अलग, शिक्षकों की रचनाएं अलग, और इसको बड़े मुक्त ढंग से आयोजन करना जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिवेश प्रतिबिंबित होता है।
इस अवसर में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह समय गणतंत्र के अमृतकाल और छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष का है तथा इसी भाव के अनुरूप इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
आज से 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है। देश से भी प्रदेश से भी ख्यातिनाम साहित्यकार इसमें पधारे हैं। 120 से ज्यादा साहित्यकार पधारेंगे। कुल 42 सत्र का आयोजन हुआ है और साहित्य प्रेमी भी भारी संख्या में इसमें आ रहे हैं। और निश्चित रूप से साहित्य जगत में छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित होगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस उत्सव को साहित्य का महाकुंभ बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती ने हिंदी साहित्य को अनेक महान पुरोधा दिए हैं।
माता कौशल्या की ये धरती, भगवान राम का ननिहाल, छत्तीसगढ़ राज्य का रजत जयंती वर्ष और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ये जो साहित्य उत्सव हो रहा है, ये किसी महाकुंभ से कम नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की कोड़ा से बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए हैं और ये रायपुर में जो साहित्य उत्सव हो रहा है, अपने उन पूर्वजों को स्मरण करते हुए एक बार फिर साहित्य के साधक छत्तीसगढ़ को और देश को साहित्य के शिखर पर लेकर जाएगा।
समारोह में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता मनोज जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा भी इस अवसर पर मौजूद थे। 3 दिवसीय साहित्य उत्सव के दौरान कुल 42 सत्र होंगे, जिनमें समकालीन साहित्य के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर गहन विमर्श होगा। इस उत्सव में देशभर के 120 साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार नवा रायपुर में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव पर केंद्रित रहेगा। इसका प्रसारण कल 24 जनवरी को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के लोकभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2024 के 110 और वर्ष 2025 के 129 टॉपर विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। इनमें पिछड़ी जनजाति वर्ग के विद्यार्थी भी शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि सत्र 2024 और 25 के 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के 239 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप मेडल, प्रशस्ति पत्र और प्रत्येक विद्यार्थी को 1.5 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खाते में दी गई है। धमतरी जिले में आज 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 7 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन सभी माओवादियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा और धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस महानिरीक्षक श्री मिश्रा ने बताया कि इन माओवादियों ने 2 इंसास राइफल, 2 SLR कार्बाइन और भरमार बंदूक सहित कई अन्य हथियार भी सौंपे।
कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें 2 डीवीसी, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है, 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी है, साउथ बस्तर के, और 1 जो उषादी जिनको बोलते हैं उर्फ बालम्मा, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है। रायपुर के पहले पुलिस आयुक्त के रूप में आईपीएस डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कमिश्नर कार्यालय में आज अपना पदभार ग्रहण किया। आईपीएस श्री शुक्ला इससे पहले बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक थे। 2004 बैच के आईपीएस श्री शुक्ला को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2 बार राष्ट्रपति मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में रायपुर शहर के 21 थानों और रायपुर ग्रामीण के 12 पुलिस थानों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल को रायपुर रेल और जशपुर के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को रायगढ़ का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद्र सिंह को जशपुर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। T20 मैच को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के धौराभाटा स्थित रियल इस्पात कारखाना परिसर में घटित दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन होना पाया गया है। इसे देखते हुए संयंत्र के फर्नेस क्रमांक 1 के संचालन और मेंटेनेंस सहित सभी कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे कि खबर दी जा चुकी है कि कल इस संयंत्र में विस्फोट और गर्म लावे की चपेट में आने से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं। इस बीच रियल इस्पात संयंत्र प्रबंधन की ओर से हादसे में मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृतक के परिजन को कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से औसतन 10 लाख रुपए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पेंशन के रूप में आगामी वर्षों में औसतन कुल 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया के समक्ष छत्तीसगढ़ सहित गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली विभिन्न प्रदेशों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपनी विशिष्ट और आकर्षक प्रस्तुति से सभी का ध्यान आकर्षित किया। झांकी में जनजातीय समाज की जीवन शैली, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, वेशभूषा और ऐतिहासिक विरासत की झलक को प्रदर्शित किया गया है। यह झांकी देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की थीम पर आधारित है। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों की झांकियों का चयन किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 24 जनवरी को नवा रायपुर के मानातूता में प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी एंड कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन करेंगे। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेज में डीन की नियुक्ति कर दी है। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नवनियुक्त सलाहकार आर कृष्णदास को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। जारी आदेश के अनुसार श्री दास मुख्यमंत्री को मीडिया से संबंधित विषयों सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देंगे। दुर्ग के दारगांव में महिला कमांडो सिविल डिफेंस प्रशिक्षण और प्रेरणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवा रायपुर में शुरू हुआ 3 दिवसीय साहित्य उत्सव, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने किया शुभारंभ। धमतरी जिले में 47 लाख रुपए के इनामी 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।